نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق جس روز پنڈلی کھولی جائے گی ويدعون إلى السجود اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے لیکن فلا يستطيعون لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے یعنی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے اور خاشیتن ابصارهم ان کی نظریں جھکی ہوں گی ترحقهم ذلہ اور ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی آخر ان کا اتنا برا انجام کیوں ہوا آخر ان کا جرم کیا تھا تو اس کا جواب کیا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اور وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف لیکن وہ انکار کرتے تھے سورة قلم کی آیت نمبر 42 سے 43 آپ کے سامنے رکھی اس کو اور قرآن پاک کی مختلف آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے میدان محشر میں رسوا کرنے والے اعمال حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹاپک اتنا زیادہ انسان کے خوش گم کرنے والا ہے کہ اگر ہم صرف اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو اس وقت ہمیں کوئی اور چیز یاد نہ رہے کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ رسوائی سے بہت ڈرتا ہے بھری محفل میں کسی کو کہا دے نا اٹھیں یہاں سے نکلیں یہاں سے اور کسی کو کہا دے اٹھے اس کرسی سے میں نے بیٹھنا اور ٹکٹ دکھائیے اور آپ کو کس نے بلایا ہے شادی کا کارڈ دکھائیے کیا چند لفظ ہی ہیں نا لیکن آپ نے ضرور سننے کے بعد اپنے اندر ایک ہلچل محسوس کی ہوگی کہ ایسا ہمارے ساتھ تو کبھی نہ ہو بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ کوئی انسان فطری طور پر دنیا میں بھی اپنی رسوائی برداشت نہیں کرتا بڑا تو بڑا بچہ بھی برداشت نہیں کرتا جو مائیں بچپن سے اپنے بچوں کی بے عزتی کرنے کی عادی ہوتی ہیں اصل میں وہ اپنے بچوں کو پھر اس احساس سے عاری کر دیتی ہیں کہ اب زندگی میں تمہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے تو تمہیں ڈھیٹ بن کر غلط کام کرتے ہی جانا ہے تو چلے دنیا میں تو ہے سو ہے لیکن آخرت جو کہ ایک ایسی نہ ختم ہونے والی حقیقت ہے اور دنیا میں ایک دن کوئی رسوا کر دے جب یاد آئے ہاتھوں میں پسینے آ جاتے ہیں خوف آنے لگتا ہے کیا وہ وقت کے جو 1000 سال کا ایک دن ہوگا اگر میدان محشر میں ہم رسوا کر دیے گئے تو پھر آپ یہ سوچئے کہ اس کے بعد والی زندگی میں کیا اس کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی غلطی کر دیں اور اللہ کے نبی نے دعا بھی سکھائی کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا تو آئیے اس قرآن پاک کی چند آیات اور احادیث کو لے کر ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا اعمال ہیں جو قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہوں گے اور اس وقت آپ نے میں نے اس کو کس سوچ کے ساتھ سننا ہے کہ الحمدللہ ابھی میں زندہ ہوں ابھی میں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی ایک چیز مجھے یا آپ کو اپنے اندر نظر آئے تو فوراً یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ استغفار ندامت شرمندگی اور ایک نیا سٹارٹ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں پہلی چیز تو یاد رکھیے گا جو ایک متعدی چیز مجھے آپ کو اب تک سمجھ آ چکی ہے اور وہ کیا ہے کہ سچی عزت دین سے ملتی ہے ایمان سے ملتی ہے عزت کا معیار اللہ نے قرآن میں تقویٰ کو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بس اصل تقویٰ جیسے جتنا ایمان زیادہ جتنا تقویٰ زیادہ جتنی خدا خوفی زیادہ جتنی اللہ کی فرما برداری زیادہ اتنی قیامت کے دن عزت زیادہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے آپ میں سے ان سسٹرز کے لیے جو نہیں پہلے سن سکیں یا نہیں پہلے انہوں نے اس موضوع کو پڑھا تو وہ انشاءاللہ اس موضوع کو بھی سن سکتے ہیں ایک الگ ٹاپک موجود ہے کہ میدان حشر میں عزت دلوانے والے اعمال کون سے ہیں تو آپ ریکویسٹ کر کے بھی وہ لیکچر لے سکتے ہیں اور حقیقت ہے کہ ہم سب دنیا سے اس حال میں جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی ہمارا ذکر خیر ہو بجل لسان الصدق فی الآخرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی तो हम अपने लिए भी इसी दुआ को पढ़ते हैं, लेकिन आज हम इसका ऑपोजिट ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा क़यामत के दिन के साथ ख़ास हैं, दो तीन जुमलों में लिख लीजिए, फिर इंशाल्लाह वो आमाल भी वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। और वो क्या है, पहली चीज़ याद रखिए कि क़यामत का दिन बहुत लंबा है, 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, और उस दिन अगर इज़्ज़त मिली तो लंबी इज़्ज़त है, तवील इज़्ज़त है। और अगर उस दिन कुछ इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई या उसके ऊपर अल्लाह ताला की कोई आजमाइश आ गई, तो वो पकड़ जो है वो बड़ी सख्त पकड़ होगी। पहला अमल जिसको इस वक्त हम अपनी लिस्ट के अतबार से देखेंगे वो क्या है, सोने और चांदी की ज़कात ना देने वालों को क़यामत के दिन उन्हीं सोने और चांदी को पिघलाकर तख्तियों की शक्ल में दागा जाएगा। इमेजिन कीजिए किसी को सामने खड़ा करके उसके ऊपर इस्त्री के साथ निशान बनाए जाएं, तकलीफ़ भी है और शर्मिंदगी भी है और अजियत भी है। दुनिया में बास तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि सिर्फ़ आपको दर्द होता है, मतलब सर में दर्द है, आपको नहीं पता मेरे हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता आपके हो रहा है कि नहीं, बज़ाहिर हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से दूसरे हम पे तरस खाते हैं। मसलन स्किन डिजीज़ है, लेप्रसी है, कोढ़ का मर्ज़ है, जिस्म पे कुछ निकल आया, टांग कट गई, ये वो तकलीफ़ें होती हैं कि जिसके बाद इंसान के ऊपर लोग तरस खाने लगते हैं। इमेजिन कीजिए कि दुनिया आपने खूब दौलत में कमाई, क्योंकि ज़कात तो उसी पे होती है ना जिसके पास एक साल तक के ख़ास सर्टन अमाउंट का माल मौजूद रहा। दुनिया में इज़्ज़त बनाई, जिसको आपकी मेरी ज़ुबान में कहते हैं खूब टॉर किया, अपनी खूब बड़ाई की और लोगों को दिखाया कि हमारे पास बहुत कुछ है, और लोगों ने कहा कि ये बड़े सेठ साहब हैं, ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके पास बहुत है। और क़यामत के दिन ऐसे बड़े लोगों को सोने और चांदी की उन तख्तियों को गरम करके उसके ऊपर स्टैम्प किया जाएगा। फिर इसी तरह से याद रखिए कि ऊंट और गाय, बकरी, भैंस, भेड़, यानी जिसका जो भी प्रोफेशन है, जिसके पास जो भी माल है, सोने चांदी की शक्ल में है तो सोना चांदी, जानवर हैं तो जानवर की सूरत में, इन सब की ज़कात ना अदा करने वालों को भी ये जानवर 50,000 साल तक मैदान मख्शर में मुसलसल अपने पाँव के नीचे रोनते रहेंगे। और याद रखिए कि हशर का मैदान 50,000 साल का होगा। इन सारी बातों की दलील नोट कर लीजिए, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस हम तक पहुंचाई और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसको नकल किया। फरमाते हैं कि जो शख्स सोने और चांदी का मालिक हो, खुद से पूछिए, किसी को कुछ ना कोई पूछे, हक ही नहीं है, कोई नहीं जानता किसी की असल, आपकी असल आप, मेरी असल मैं, क्या मेरे पास सोना चांदी है और कितना है, 7.5 तोले। ये तो मैं एक अपने आप को रिमाइंडर के तौर पे बता रही हूँ ना, यानी नसाब तक सोना है और चांदी है तो 52 तोले है। फिर उसका हक अदा ना करे, हदीस में जो लफ्ज़ है ना वो ज़कात अदा नहीं है, हक अदा ना करे। और हक अदा ना करना क्या है कि उस पैसे ज़कात देना। क़यामत के दिन सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी, फिर इसको जहन्नम की आग में दहकाया जाएगा, फिर इसे इसके पहलू, पहलू कहते हैं ये साइड्स, फिर पेशानी ये माथा, फिर पीठ पर दाग लगाए जाएंगे। और जब कभी ये तख्तियाँ गर्म करने के लिए आग में वापस ले जाई जाएंगी तो दोबारा अजाब के लिए उनको लौटाया जाएगा। और ये सलूक हशर के पूरे दिन तक होता रहेगा, जो कि 50,000 साल का दिन है, यहाँ तक कि सारे इंसानों के फैसले हो जाएंगे। फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखेगा या जहन्नम की तरफ, ज़रा सा सोचिए, 50,000 साल तो किसी की उम्र भी नहीं है, हमारी तो 10 नस्लें भी दे जाए पीछे तो इतनी उम्र उनकी भी नहीं है, और दूसरों का हिसाब हो रहा है और आपके साथ ये तपाया हुआ मामला हो रहा है। सहाबा इस बात को सुनकर घबरा गए। अच्छा याद रखिए, सोना चांदी सबके पास नहीं होता था, हम जैसे होते हैं ना, कहते शुक्र है हमारे पास कौन सा है जो हम इसका गम करें, और यहाँ मुबारक के लायक है जिनके पास नहीं है, हिसाब ही कोई नहीं, जान छुटी। लेकिन सहाबा का क्वेश्चन देखिए उसके बाद, जो वाकई उनके बादशौर होने की दलील है, कहने लगे अल्लाह के नबी ये बताइए फिर ऊँटों का मामला क्या होगा, क्योंकि ऊँट अक्सर लोगों के पास थे, जानवर तो पालते थे, और वो उस ऊँट का हक अदा ना करें। और इसके हक से ये भी है कि पानी पिलाने के दिन का दूध दोहे, क्योंकि अरबों के रिवाज में जिस दिन ऊँट को पानी पिलाते थे ना उस दिन का दूध मस्कीनों को देते थे, क्योंकि उस दिन जानवर ज़्यादा देता था। मैं कहती हूँ उनके दिल कैसे थे, असल मैं इस किरदार की तलाश में रहती हूँ हमेशा अपने इर्द गिर्द, अपने लिए भी और दूसरों के लिए, कहना ना पड़े नेकी करो, मांगना ना पड़े चंदा दो, डोनेशन ना देने पड़े, लोगों को पकड़ा पकड़ा कर ना बताना पड़े जाओ इधर सुन लो, इधर आ जाओ ले जाओ, अंदर अर्ज पैदा हो, अंदर एक तड़प पैदा हो जाए। तो वो कहते हैं कि जिस दिन मिसकीनों को पिलाना था उसे उसको नहीं पिलाया, खुद ले गया, अपना था क्या था, लेकिन रिवाज था, लेकिन उसने कंजूसी की। फरमाया ऐसे शख्स के जानवर को क्या किया जाएगा, क्यामत के दिन हमवार ज़मीन पर उस शख्स को ऊंधा, ऊंधा कहते हैं कि ये पूरा माथा ऐसे, जैसे आप साइड मना है लेटना, लेकिन उसको ऊंधा लटाया जाएगा, और ऊंट बहुत फरबा, फरबा कहते हैं मोटे को, खूब मोटे ताज़े होकर आएंगे, और इनमें से एक बच्चा भी कम नहीं होगा। देखिए ये मैं हदीस का तर्जमा पढ़ रही हूँ आपके सामने, अरबी पढ़ूंगी तो टाइम लगेगा और आपसे लिख नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसको इमेजिनेशन में लाइए। फरमाए जितने भी ऊँटों के साथ ये किया होगा उनमें से एक बच्चा भी कम नहीं होगा, यानी सब के सब, और वो इसको अपने खुरों, खुर जानवर का जो पाँव है उसके नीचे, खुरों से रौंदेंगे और अपने मुँह से काटेंगे, यानी मुँह से काट रहे हैं। जब पहला ऊँट रौंद कर चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, और इसके साथ ये सलूक सारा दिन होता रहेगा, जिसका अरसा 50,000 साल के बराबर है, हत्ता कि लोगों का फैसला हो जाएगा, फिर वो इसके बाद अपना रास्ता जन्नत या जहन्नम की तरफ देखेगा। यहाँ से एक जुमला नोट करें, ये है अजाब हशर। हम कहते हैं ना अल्लाह में हशर के भी अजाब से बचा, यानी हो सकता है कि इस अजाब के बाद उसको जन्नत मिल जाए, लेकिन हशर का मैदान ये कौन बर्दाश्त कर सकता है इस अजाब को। फरमाया कि अल्लाह के नबी अगर किसी की गाय हो और बकरी हो और उसने भी ना किया उसका हक अदा, तो फरमाया कोई गाय और बकरी वाला ऐसा नहीं कि जो उसका हक यानी ज़कात अदा ना करे, मगर क़यामत के दिन उसको ऊंधा लटाया जाएगा एक हमवार ज़मीन पर, और इन गाय और बकरियों में से कोई एक भी कम नहीं होगा, और सब की सब आएंगी, और इनमें से कोई सींग मुड़ी भी नहीं होगी। आप कहते हैं ना कि जानवर का जब सींग मुड़ जाता है ना तो वो इतना तकलीफ नहीं देता, खुर नोक वाला सींग जो है ना, फरमाया और ना बगैर सींगों के होगी और ना टूटे हुए सींग से होगी। अल्लाह के नबी के बात करने का अंदाज़ देखिए, कैसे खोल के बात करते थे और 90 तुले लफ्ज़ों से बात करते थे। कहा ना मुड़ा होगा, यदि मुड़ा हुआ सींग तो तकलीफ ही नहीं देता, और ना टूटा होगा, बल्कि वो बिल्कुल सीधा होगा, और वो उसको अपने सींगों से मारेंगी और उसको अपने खुरों से रौंदेंगी, और जब पहली गुजर जाएगी तो पिछली आ जाएगी। मुराद क्या है कि लगातार आएंगी, दिन भर ऐसा होता रहेगा, जिसकी मुद्दत 50,000 साल के बराबर है, यहाँ तक के बंदों का फैसला हो जाएगा, फिर वो अपना रास्ता जन्नत या जहन्नम की तरफ लेके जाएगी। अजीज साथियों, चंद जुमले मुझे भी बोलने की इजाज़त दीजिए इस हदीस को सुनने के बाद। आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें सर से पांव तक नवाजा हुआ है, हमारे घर भरे हुए हैं, अल्लाह की रहमत से हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपनी माल की सिर्फ ज़कात नहीं देते, तो फिर आप मुझे बताइए क्या ये मामला नहीं होना चाहिए था। परसों मैं पिंडी में थी तो हमारी होस्ट, मैं कुछ माओं से मुतासिर हो जाती हूँ ना, उनमें से एक माँ के घर में, वो मेरी होस्ट थी, स्टूडेंट है माशाल्लाह, तो करीब से रहने का मौका मिला, तो उनका बेटा था तकरीबन 8-9 साल का, इंतहाई डिसेंट मुहसब बच्चा, जो उसने एक रात में मुझसे और सर से बातें पूछी की, तो मैं उसको दुआएं देकर आई हूँ कि अल्लाह तुम्हारे बच्चे को बस नज़र से बचाए और आँखों की ठंडक बनाए। उस स्टूडेंट ने जो अपनी बात बताई, मैंने नहीं ज़िंदगी में कभी ये बात सुनी थी। अब आप सुनिएगा, ये फतवा नहीं है, ये फतवा नहीं है। कहने लगे उस्ताजा, हर साल मैं अपने इस बच्चे से रमज़ान को जब भी मौका आता है, इसकी जो सेविंग्स है उसका 2.5% इसके हाथ से दिलवाती हूँ। कोई नसाब नहीं है कि वो भी कुछ 7.5 तोले सोना, वट एवर ही हैज उसका 2.5% करता और अपने हाथ से ये ज़कात देता। मैंने उसामा को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, वो भी बहुत खुश हुए। मैंने कहा देखे, कभी आप सोच सकते हैं कि ये बच्चा जो अब 1 साल 1.5 से ये कर ही रहा होगा, इससे भी पहले ही है, क्या कभी ज़िंदगी में ये सोच सकता है कि मैं ज़कात ना दूँ? आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करें, 500 है ना, 500 का 2.5%, बच्चों को ईदी मिलती है ना और जमा हुई भी है उसका 2.5%, और यकीन कीजिए इससे बच्चों के दिल खुलते हैं, तो अपने बच्चों को शुरू से इसकी आदत डालें। और मैं और आप यहाँ बैठे बैठे सोचें, किस माल की ज़कात नहीं दी, सोने की चांदी की? शौहर की ज़िम्मेदारी नहीं है, फिक की क्लास नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, बस आपको एक फ़ायदे की बात बता दूँ कि आपका मेरा ज़ेवर है, आपको मुझे ही उसकी ज़कात देनी है, शौहर दे दे उनका एहसान है, और बहुत सारे एहसानों की तरह आप खुद दीजिए। अब कहेंगे कहाँ से दें, हम कौन से कमाते हैं, उसी में से एक अंगूठी बेचे और उसके हिसाब की पैसे दे दीजिए, क्योंकि देने से कम नहीं होता। ये भी दिल के अंदर एक शैतान ने वसवसा डाल दिया कि देने से कम होता है। तो बहरहाल अपनी ज़कात का हिसाब कीजिए। अब सवाल पैदा होता है कि आज तक दी नहीं, अब क्या करें, हिसाब लगाएं उतने सालों का तो दीजिए। याद होगा आपने वो वाक्य अल्लाह के नबी के, बस माँ बेटी आई और मोटे कंगन थे, शायद 14 तोले, क्या एक डिस्क्रिप्शन भी आती है हदीस में। तो आपने कहा कि इनकी ज़कात देती हो, कहा नहीं। कहा फिर तुम चाहती हो कि तुम्हें आग के कंगन पहनाए जाएं, कहा नहीं। कहा फिर जब से है उसकी ज़कात दो, उतार के अल्लाह के नबी के आगे रख दिए, कहा यह आप अल्लाह के लिए ले लें, मुझे नहीं पता इसमें से क्या बचता है। और हकीकत है, आज अगर हम अपने पिछले सालों की ज़कात जमा करें जो नहीं दी, तो वो चीज़ें फिर हमारे पास रहने की हकदार ही नहीं है। तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और इस मौजू को पढ़िए, छोटी सी किताब है किताब ज़कात इकबाल केलानी सीरीज़ के, आप एक दफ़ा बस ऐसे ही पढ़ लें, ऑडियो सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इतनी आसान बुक्स हैं कि आप खुद पढ़ लीजिए किस चीज़ पर ज़कात है किस पर नहीं है। अभी आपके जहनों में बीसियों सवाल आएंगे, मुझसे नहीं पूछे, जाते हुए रास्ते में किसी बुक स्टोर से किताब ज़कात ख़रीद लीजिए, और भी ख़रीद लें, बहुत सी होंगी, लेकिन ये बुक इतनी आसान है कि हम जैसी आम ख़वातीन खुद से भी पढ़ सकती हैं। और उसमें किस चीज़ पे ज़कात है, किस पे नहीं, कितनी है, कब नहीं, बस आप एक इन नॉलेज के लिए लें। आप मेरे हाल शुरू करेंगी तो आप 2-3 घंटे में वैसे ही वो बुक पूरी पढ़ डालेंगी, और ख़ास तौर पर रमज़ान आने वाला है, उससे पहले पिछली ज़कात पूरी कर लीजिए ताकि अगली देने के लिए हम सब तैयार हों। हम यहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन हमारे सर पर एक पैनी, एक रुपया और एक पैसा भी ज़कात का ना हो, क्योंकि इस मामले में हमारे कल्चर में बड़ी ही सहूलत है, पता नहीं कितना है, पता नहीं कैसे, मर्दों को पता होता है, हमें नहीं पता, उनको नहीं पता, पता कीजिए आप कम से कम अपनी चीज़ों का तो पता करेंगे। तो पहला फिर अमल क्या निकला, माल से मुतल्लिक और ज़कात है। दूसरी चीज़ जो क़यामत के दिन इंसान को रुसवा कराएगी वो है बेनमाजी होना। मैदान मख्शर में मुनाफिकों और बेनमाजियों की रुसवाई और तजलील का एक मंजर आपके सामने जो आयत रखी थी सूरत अल-कलम आयत 42-43, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यौम युक्शफ़ु अन साक़िन, जिस रोज़ हक ताला पिंडली खोलेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा, तो ये लोग सजदा न कर सकेंगे, इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और ज़िल्लत छा रही होगी, क्योंकि दुनिया में जब ये सही सालिम थे उस वक्त इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था तो ये इनकार कर देते थे। ज़रा से इसको इमेजिनेशन में लाइए, आज मैं सेहतमंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, झुक सकती हूँ, झुक सकते अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक से। आप इमेजिनेशन में लाएं कि क़यामत का दिन है और अल्लाह ताला नज़ूल फरमाते हैं, दुनिया में कोई बड़ा आ जाए ना तो हमारे पाँव ही नहीं टिकते, हाथ उठेंगे, खड़े होंगे, सीने पे हाथ रखेंगे, झुकेंगे, इज़्ज़त नवाजी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। याद रखिए अल्लाह को देखकर कुदरती तौर पे लोग सजदों में जाना चाहेंगे। पूरा नज़ूल है अहादीस में कि अल्लाह ताला जब आसमान दुनिया से नज़ूल फरमाएंगे मैदान हशर में, या उस दिन के हालात के मुताबिक जब मैदान हशर में आएंगे तो लोगों के दिलों पर कितनी रिक्कत तारी होगी, लेकिन मुनाफिकों की कमरे तख्ते की बन जाएंगी और वो अदा नहीं कर सकेंगे। और एक और हदीस में आता है अबू सईद अल-खुदरी से, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला की पिंडली खुल जाएगी। पिंडली खुल जाएगी क्या है, गैब का मामला है, बस हदीस में ऐसे है तो ऐसे ही पढ़ दीजिए, मुराद ये कि अल्लाह ताला जाहिर हो जाएगा। और जो शख्स दुनिया में खालिस अल्लाह के लिए सजदा करता था, इसे अल्लाह ताला सजदे की तौफीक देंगे, खुद ही दे देंगे। और जो अपनी जान बचाने और लोगों को दिखाने के लिए सजदा करता था, इसकी पीठ को अल्लाह ताला एक तख्ते की सूरत में बनाएंगे, और जब वो सजदा करना चाहेगा तो वो गिर पड़ेगा। इमेजिनेशन में लाए कितनी रुसवाई है, ये मुस्लिम की रिवायत है। हम अपने सजदों पे बात करें, ख़ास तौर पे देखिए यहाँ नमाज से ज़्यादा सजदे की बात है। मैं अपनी सारी बहनों से माजरत के साथ, जिनका ये गुमान है कि वो सजदा नहीं कर सकती, ये चीज़ मैं कसरत से अब देखती हूँ। जवान बच्चियाँ, प्रेगनेंट बच्चियाँ, वो औरतें जो सारा दिन मैंने देखा घंटों किचन में खड़ी रहती हैं, और वो लोग जो दिन रात भागा दौड़ी बाजार इधर उधर जाते, जो ही नमाज का वक्त आता है कुछ तो पूरी नमाज बैठ के पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि किसी बेड के पास खड़े हो जाएंगे लेकिन सजदे के मौके पे, रुकू के मौके पे झुकते हैं। आप यकीन करें, इस बात को माने ना माने, हमारे जिस्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कि अगर हम बीमारियों के बावजूद, प्रेगनेंसीज के बावजूद, हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद थोड़ा थोड़ा कर करके झुकते जाएं, तो अल्लाह ताला हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डाल देगा। मुझे किसी की बात सुनने का मौका मिला तो वो बता रही थी कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि आप सजदा नहीं कर सकती, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, मोड़ने में दर्द है, ये है वो है। कहती कि मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ कभी तकिए रखवाए, नीचे फॉर्म का मैट्रेस बिछाती थी, फिर अपना पाँव पसारती थी, मैंने हिम्मत नहीं हारी कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में सजदा चला जाए। और कहती कि शुरू में मुझे मुश्किल हुई, चीखें निकली, लेकिन कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं रिलैक्स हो गई और मैंने चूंकि गिव अप नहीं किया तो मैं सजदा करती रही। आप में से जो बहन आज तक कभी सजदा नहीं कर रही, आज से अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हुए, मेरी बात पे नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह मैं क्यों तेरे आगे ना झुकूं, वस्जुद वक्तरिब। देखिए ये पेशानी तो बनी ही इसलिए कि इसको रब के आगे झुकाया जाए। तो नमाज में कम अज़ कम फ़र्ज़ नमाजों में पूरा झुक के सजदा करने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं होगा। हमारी माएँ प्रेग्नेंट भी होती थी फिर भी सजदे करती थी, हमारी दादियाँ भागा दौड़ी करती थी, बुढ़ापे में भी लोग ऐसे ही थे। जितना इस जिस्म को हम सख्त करेंगे उतना ये सख्त होता जाएगा। और मैं किसी नॉन मुस्लिम, कोई डॉक्टर हैं तो उनके बारे में ये पढ़ रही थी कि वो कहता है कि अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं पूरी दुनिया में वुजू और नमाज का निज़ाम राइज कर दूं। और उसके बाद इतना लंबा आर्टिकल था, फवाइद क्या है, यदि वो अपनी साइंस के साथ प्रूव करता है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, वुजू करता है, उसके जिस्म के किन किन हिस्सों पे पानी लगता है, और इसके बाद रुकू और सजदा, वो कहता है कि इसके इंसान के जिस्म को इतने फ़ायदे हैं कि अगर कोई मुझे अथॉरिटी दे तो मैं लोगों पे फ़र्ज़ कर दूँ, तो वो अथॉरिटी वाले ने फ़र्ज़ किया हुआ है और हम उसकी बात कम ही सुनते हैं। आदत डालें, छोटे छोटे बच्चों को सजदा करवाएं, आप देखिए कि शुक्र का सजदा तो अल्लाह के नबी को इतना प्यारा था, आपको जब कोई खुशी की खबर मिलती है आप सजदे में जाते, ऐसे भी चले जाया करें। आपका दिल करे ना दुआ मांगने को, बस नीचे जाइए सजदे की सूरत में और जो दुआएं मांगने मांगे, हमारे कल्चर में क्या हाथ उठाते हैं ना, मारूफ बात है, कभी कभी सजदे में जाकर भी दुआ मांगे, क्योंकि हदीस में आता है कि सजदे में अल्लाह ताला दुआओं को ज़्यादा सुनता है। अब यहाँ देखिए बात, चूँकि सजदे से बढ़कर बेनमाजी की है, एक मुसलमान घराना क्या ये अफोर्ड भी कर सकता है, बर्दाश्त भी कर सकती है एक माँ कि उसका बच्चा नमाज के बगैर सो जाए, और फजर पे शौहर उठे ही ना, और बेटी जोहर कज़ा कर दे स्कूल में, और असर जो है वो किसी मेहमान की मदारत में चली जाए या बाज़ारों में शॉपिंग के लिए चली जाए, और मगरिब में डिनर तैयार करने में चला जाए, क्या ये मुसलमान घराना होगा? नमाज को अहमियत दें हम, ये नमाज है जो आपको मुझे सीधा रखती है, ये ब्रेक दिलाती है। कल मैं इस्लामाबाद में थी तो एक सिस्टर्स थी, काफ़ी सारी डॉक्टर्स थी, उनमें से एक आई तो वो बताने लगी कि मेरा एक इशू है कि मैं जॉब जहाँ करती हूँ वहाँ मुझे कुछ नमाज़ें वहाँ पढ़ने का मौका नहीं मिलता या इजाज़त नहीं है। खैर वो बात कर रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी बहन इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप जॉब छोड़ दीजिए। मैंने कहा देखे मैं इतने लोगों के बीच में से भी आपकी बात सुन रही हूँ और मैं पूरे शऊर के साथ आपको जवाब दे रही हूँ, आप ये सवाल अगर नॉन मुस्लिम मुल्क में खड़ी होके कर रही होती ना तो मेरे गुमान में आ जाता कोई नॉन मुस्लिम कंपनी है, कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ रिलीजियस प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है कोई, और मैं वहाँ भी आपको यही कहती कि आप ये जॉब छोड़ दें, टाइम बदल लें, आपको बाथरूम में जाने से कोई नहीं रोकता, आपका लंच ब्रेक होता है, आप जॉब पे साइन करने से पहले बता दें कि दिन में इतनी दफ़ा मुझे 10-10 मिनट्स की चाहिए, और आप तो एक मुसलमान मुल्क में। और मुझे हैरत हुई क्या पाकिस्तान का कोई हॉस्पिटल या इदारा या क्लिनिक इतनी जुरत कर सकता है कि एक औरत को नमाज ना पढ़ने दे। मायूसी तो उनको हुई होगी मेरी बात से, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती थी, नमाज की कोई रुख्सत नहीं है। अल्लाह से दुआ करें सब बेनमाजियों को अल्लाह नमाजी बना दे। और एक छोटी सी बात कहने की इजाज़त दे कि हमारे ड्राइवर भी मुसलमान हैं, हमारी इधर की उधर की भागा दौड़ी में अगर उनकी नमाजें गईं तो याद रखिए हम पकड़दार में होंगे। अगर आपके शौहर पे नमाज मस्जिद में फ़र्ज़ है ना, अगर आपका ईमान है ना, आपके बेटे की नमाज के 27 गुना अजर है ना अगर मस्जिद में, तो वल्ला ही आपके ड्राइवर को भी मस्जिद में पढ़ने का इतना ही सवाब होगा, और आप अपनी खुशी से उसको इजाज़त दें आपको भी उसकी नमाजों का अजर होगा। इन गरीबों को ये छोटे छोटे ब्रेक्स ही मिल जाएं, हर नमाज आपने मस्जिद में पढ़नी है, यकीन करें वो आपको दिल से दुआएं देंगे। अपनी मासियों को, ये जो मेड्स हैं हमारे घरों में, सुबह से शाम तक वो बेचारियाँ हमारे कपड़े खाने पीने लगी रहती है, आप उसकी हर नमाज के उसको 15 से 20 मिनट क्या आधा घंटा दे दें, कुछ भी नहीं होता। आप कहते कि यूरोप में 1 घंटा कितने का गिना जाता है, 60 मिनट होता है ना, लेकिन जॉब पे 1 घंटा 45 मिनट का होता है। यानी अगर अमेरिका में किसी को पर आवर जॉब पे करते हैं तो 1 घंटे की नहीं होती, 45 मिनट है। क्यों? वो कहते हैं कि इंसानी फितरत है कि 45 मिनट के बाद उसको एक शॉर्ट ब्रेक चाहिए होता है। तो अल्लाह ने तो हमें इतने प्यारे प्यारे ब्रेक्स दिए हैं, छोटे बच्चों को साथ लेकर चले। इन चीज़ों से इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करेंगे, और दुनिया में भी आप देखिए बेनमाजी के चेहरे से रोशनी चली जाती है।